लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन प्रेरितिक निवास के पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa catechesi mi soffermerò sulla preghiera per l'unità dei cristiani. Infatti la settimana che va dal 18 al 25 gennaio è dedicata in particolare a questo, a invocare da Dio il dono dell'unità per superare lo scandalo delle divisioni tra i credenti in Gesù.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज की धर्म शिक्षा में हम ख्रिस्तीय एकता की प्रार्थना पर चिंतन करेंगे। वास्तव में 18 जनवरी से 25 जनवरी का सप्ताह विशेष रूप से इसके लिए समर्पित है, जहां हम ख्रिस्तीय विश्वासियों के मध्य एकता हेतु प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारे बीच से विभाजन के कलंक दूर हों। अंतिम व्यारी के बाद येसु ख्रिस्त ने अपनों के लिए प्रार्थना की कि वे सभी एक हो जाएं। यह प्रार्थना दुख भोग के पहले की गई, जिससे हम आध्यात्मिक उपचार की संज्ञा दे सकते हैं। हम इस पर गौर करें। येसु ने अपने शिष्यों को एकता में बने रहने की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने अपने पिता से हमारे लिए प्रार्थना की कि हम सभी एकता में बने रहें। इसका अर्थ हमारे लिए यही है कि हम अपनी शक्ति से एकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे भी बढ़कर एकता हमारे लिए एक उपहार है। हमें अपनी प्रार्थना में इस कृपा हेतु मांग करने की जरूरत है। संत पापा ने कहा कि हम में से प्रत्येक को इसकी जरूरत है। वास्तव में हम स्वयं अपनी एकता में बने नहीं रह सकते हैं। यहाँ तक कि संत पौलुस भी अपने में इस दर्द भरे द्वंद को अनुभव करते हैं। मैं अपने में अच्छाई करना चाहता हूँ, लेकिन बुराई ही करता हूँ। इस तरह उन्होंने हमारे बीच व्याप्त विभाजनों को अपने में अनुभव किया। लोगों के बीच विभाजन परिवार में, समाज में, देशों के बीच और यहाँ तक कि विश्वासों के बीच और हमारे अंदर भी विभाजन की स्थिति। द्वितीय वैटिकन महासभा कहती है,
Gli squilibri di cui soffre il mondo si collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo.
असंतुलन जिसके बीच विश्व कार्यरत है, वह मुख्य रूप से मनुष्य के हृदय में व्याप्त असंतुलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही बहुत सारी चीजें एक दूसरे से युद्धग्रस्त स्थिति में हैं। अतः वह आंतरिक विभाजनों से ग्रसित है और वहीं से बहुत सारी चीजें और समाज में ऐसी बड़ी असहमति प्रसारित होती है। इसका निदान इस तरह विभाजनों का विरोध करने में नहीं है, क्योंकि असहमति के द्वारा असहमति उत्पन्न होती है। इसके उपचार की शुरुआत ईश्वर से शांति, मेल मिलाप और एकता हेतु निवेदन करने से होती है। यह ख्रिस्तियों के बीच एकता हेतु सर्वप्रथम निहायत है। एकता हमारे लिए केवल प्रार्थना के जरिए फलहित की जा सकती है। राजनयिक प्रयास और शैक्षणिक वार्ता इसके लिए पर्याप्त नहीं है। ये सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। यीशु इस बात से वाकिफ हैं और स्वयं प्रार्थना करते हुए हमारे लिए उस मार्ग को खोलते हैं। एकता हेतु हमारी प्रार्थना इस भांति हमारे लिए एक नम्र लेकिन विश्वास में यीशु ख्रिस्त की प्रार्थना में सहभागी होना है, जो हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि कोई भी प्रार्थना हम उनके नाम में करते तो वह पिता के द्वारा सुनी जाती है। इस संदर्भ में हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं एकता हेतु प्रार्थना करता हूँ? यह ईश्वर की इच्छा है, और यदि हम अपनी इच्छाओं की थाह लें जिसके लिए हमने प्रार्थना की है, तो हम पाएंगे कि हमने ख्रिस्तीय एकता हेतु बहुत कम और शायद नहीं के बराबर प्रार्थना की है। यद्यपि विश्व का विश्वास इस पर निर्भर करता है, वास्तव में ईश्वर हमसे कहते हैं कि हम एक हों, जिससे दुनिया हम में विश्वास करे। दुनिया हम पर विश्वास इसलिए नहीं करेगी क्योंकि हमने अपनी तर्क शक्ति से उसे विश्वस्त किया है, वरन हमने एकता में अपने प्रेम का साक्ष्य दिया है जो हम सबों को करीब लाता है। वर्तमान समय की गंभीर कठिनाई में यह प्रार्थना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है, जिससे युद्धों के बीच एकता कायम हो सके। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम सामान्य भलाई हेतु अपने विकल्पों को अलग करें, जिससे हमारे उदाहरण आधारशिला बने। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम ख्रिस्तियों के रूप में दृश्यमान एकता के मार्ग का साक्ष्य दें। विगत सदियों में बहुत से पहल किए गए हैं जिसके लिए हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हमें विश्वास की कमी के बिना या थके बिना अभी भी प्रार्थना और प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। यह वह मार्ग है जिसे पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए हम ख्रिस्तियों के लिए प्रशस्त करते हैं, जहाँ से हम पीछे नहीं लौटते हैं। संत पापा ने कहा,
प्रेगारे सिग्निफिका लोटारे पर लुनिता।
प्रार्थना करने का अर्थ एकता हेतु युद्ध करना है। हाँ, युद्ध करना, क्योंकि हमारा शत्रु शैतान है जो हमें विभाजित करता है। शैतान सदैव हमें बांटता है। वह सदैव ऐसा करता क्योंकि यह उसके लिए सहज है। वह सभी जगह और किसी भी रूप में हमारे बीच विभाजन लाता है, जबकि पवित्र आत्मा हमें एकता में बनाए रखते हैं। सामान्यतः शैतान हमें उच्च ईश शास्त्र से नहीं फुसलाता, लेकिन हमारे भाई बहनों की कमजोरियों से हमारी परीक्षा लेता है। वह चतुर है। वह दूसरों की कमियों और गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता, हमारे बीच असहमति बोता, आलोचना भरता और बंटवारा उत्पन्न करता है। ईश्वर के मार्ग अलग हैं। वे हमें बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वे हमें वैसे ही प्रेम करते जैसे कि हम हैं। वे हमें उसी रूप में स्वीकारते हैं, हमारी विभिन्नता, हमारे पापमय स्वभाव, और इस तरह वे हमें एकता की ओर धकेलते हैं। हम अपना मूल्यांकन करते हुए अपने में पूछ सकते हैं, उन स्थानों में जहां हम रहते हैं, क्या हम ईश्वर प्रदत्त हथियारों, प्रार्थना और प्रेम से एकता में बढ़ने के लिए लड़ाई करते हैं? संत पापा ने कहा, लड़ाई को हमारी शिकायतों के द्वारा बल मिलता है, जिसे हम पीठ पीछे करते हैं। यह शैतान का एक सुलभ हथियार है, जिसके द्वारा वह ख्रिस्तीय समुदाय, परिवारों, मित्रों के बीच सदैव विभाजन लाता है। पवित्र आत्मा हमें एकता में बने रहने हेतु प्रेरित करते हैं। इस सप्ताह प्रार्थना की विषय वस्तु विशेष रूप से प्रेम है। मेरे प्रेम में बने रहो और तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। एकता और प्रेम की जड़ यीशु हैं, जो हमें पूर्वग्रहों पर विजयी होने में मदद करते और हमारे भाई बहनों को सदैव प्रेम से देखने को प्रेरित करते हैं। ऐसा करने के द्वारा हम दूसरी रीति के ख्रिस्तियों को, उनके रिवाजों, उनके इतिहास को ईश्वर के उपहार स्वरूप देखने के योग्य बनते हैं। वे हमारे लिए उपहारों के समान हैं, जो हमारे धर्म प्रांतों और पल्ली समुदायों में उपस्थित हैं। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें और जब कभी संभव हो उनके साथ प्रार्थना करें। इस भांति हम उन्हें प्रेम करना और उनकी प्रशंसा करना सीखेंगे। प्रार्थना, जैसे कि धर्म सभा हमें सिखलाती है, हर अंतरधार्मिक मिलन की आत्मा है। यह यीशु ख्रिस्त की ओर आने का एक आधार बने और हम उनके सपनों को साकार कर सकें, जिससे हम सभी एक हो सकें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
चला चल जीवन मेरा ही अकेला नहीं तू मैं तेरे साथ मैं तेरा रक्षक मैं तेरा दीपक तू ही है मेरी बाती तू ही है मेरी बाती
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार 20 जनवरी को स्पेसिया फुटबॉल टीम से मुलाकात की। संत पापा ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, सबसे पहले आपको बधाई क्योंकि आपने कल बहुत अच्छा किया। अर्जेंटीना में टैंगो नृत्य किया जाता है और टैंगो में दो लोग आपस में चार संगीत पर नृत्य करते हैं। 19 जनवरी को रोम और स्पेसिया फुटबॉल टीम के बीच हुए मैच में स्पेसिया ने 4 गोल और रोम ने 2 गोल मारा। पिछली रात की जीत को संदर्भित करते हुए संत पापा ने कहा, आज आप 2 से 4 हैं, अतः बहुत सारी बधाइयां। संत पापा ने उन्हें वाटिकन आकर उनसे मुलाकात करने के लिए अपना आभार प्रकट करते हुए कहा, इस दौरे के लिए धन्यवाद क्योंकि मैं खेल में युवा पुरुषों और महिलाओं के प्रयास को देखना पसंद करता हूं, क्योंकि खेल एक चमत्कार है। खेल हमारे अंदर के सबसे अच्छे गुणों को बाहर निकालता है। इसे जारी रखें क्योंकि यह आप में महान कुलीनता लाता है। और संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन के दौरान विश्व के सभी राजनयिकों से परमाणु हथियार रहित दुनिया के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने हेतु प्रोत्साहित किया। संत पापा ने इताली भाषा बोलने वाले विश्वासियों का अभिवादन कर कहा, परसों शुक्रवार 22 जनवरी को परमाणु हथियारों के निषेध के लिए संधि लागू होगी। यह पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन है जो इन उपकरणों और हथियारों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है, जिनके उपयोग का अंधाधुंध विवेकहीन प्रभाव पड़ता है। यह थोड़े समय में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है और पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। मैं सभी देशों और सभी लोगों को परमाणु हथियारों के बिना दुनिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों को बढ़ावा देने हेतु दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो शांति और बहुपक्षीय सहयोग की उन्नति में योगदान देता है, जिसकी मानवता को आज बहुत आवश्यकता है। उधर शांति के लिए नॉर्वे के धर्मों ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि में नॉर्वे सरकार से आग्रह किया है कि वह पहली बार विकास प्रशिक्षण उत्पादन संग्रहण स्थानांतरण उपयोग और परमाणु हथियारों के उपयोग पर व्यापक प्रतिबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, साथ ही पीड़ितों की सहायता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दायित्व लेता है। इस संधि को 7 जुलाई 2017 को अपनाया गया था और यह 22 जनवरी को लागू होगी। अब तक यह 51 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। नॉर्वे ने हालांकि TPNW पर हस्ताक्षर करने का लगातार विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि NTO नाटो में इसकी सदस्यता के लिए इसको संघर्ष करना पड़ेगा। कलीसिया की विश्व परिषद की वेबसाइट के अनुसार शांति के लिए धर्मों के नॉर्वेजियन नेताओं ने गहरा खेद व्यक्त किया है कि देश संधि में शामिल नहीं हुआ है। यह याद दिलाते हुए परमाणु हथियारों के उपयोग से एक भयावह जन उन्मूलन के खतरे ने 1970 में जापान के क्योटो में शांति के लिए धर्मों के पहले विश्व सम्मेलन के लिए 400 से अधिक धार्मिक नेताओं को एक साथ लाया था। शांति के लिए धर्मों के नॉर्वेजियन नेताओं ने कहा, हम गहराई से आश्वस्त हैं कि परमाणु हथियारों का अस्तित्व और उपयोग हमारे धार्मिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों के साथ मौलिक रूप से संघर्ष में है। मानवता के नाम पर हम परमाणु हथियारों के उपयोग को स्वीकार नहीं कर सकते। उधर ग्रीक द्वीप लेस्बोस के दक्षिणी हिस्से में ग्रीक तट रक्षक ने मंगलवार को 24 लोगों को बचाया और पानी में एक व्यक्ति का शरीर निकाला। एक बेहतर जीवन की तलाश में संघर्ष और गरीबी से भागने की बेताब कोशिश मंगलवार को लेस्बोस के ग्रीन द्वीप के पास त्रासदी में समाप्त हो गई। तुर्की से नाव से पहुंचे लगभग 25 प्रवासियों को द्वीप के तट पर एक दुर्गम हिस्से पर एक ग्रीक तट रक्षक पोत ने पाया। प्रवासियों की रिपोर्ट के बाद एक हेलीकॉप्टर और कई तट रक्षक पोत ने इस क्षेत्र में खोज कर उन्हें बचाया। मध्य पूर्व अफ्रीका और एशिया में जितने लोग युद्ध और गरीबी से भागने का प्रयास करते हैं, तुर्की के तट से यूनानी द्वीपों तक की खतरनाक यात्रा को यूरोपीय देशों में प्रवेश करने का सबसे लोकप्रिय मार्ग मानते हैं। 2016 में यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच दलाली का सौदा किया गया था। तब तक नए प्रवासियों को तुर्की में निर्धारित किए गए द्वीपों पर ही रखा जाएगा जब तक कि वे ग्रीस में शरण के लिए उचित रूप से आवेदन नहीं करते। इस समझौते की वजह से ग्रीक द्वीपों में अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले शिविर बन गए हैं। 2016 में ग्रीक द्वीप लेस्बोस पर एक शिविर का दौरा करने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपने साथ 12 सीरियाई प्रवासियों को रोम ले आए। पिछले 13 सितंबर को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा ने भी लेस्बोस पर मोरिया शरणार्थी शिविर में बड़े पैमाने पर आग लगने से पीड़ितों के प्रति अपनी एकजुटता और निकटता व्यक्त की थी। उधर फिलीपींस के धर्माध्यक्षों ने हाल ही में 9 आदिवासी नेताओं की हत्या की स्वतंत्र जांच का आह्वान किया, जिन पर सरकार ने गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप लगाया। फिलीपीन के अधिकारियों ने 30 दिसंबर को कैपीज प्रांत में पान द्वीप पर स्थित तपेज शहर में एक संयुक्त सैन्य और पुलिस अभियान चलाया। अधिकारी विस्फोटक और अग्नेय शस्त्रों के कथित कब्जे पर आरोप लगाते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के फिलीपीन न्यू पीपुल्स आर्मी के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग की। उनका दावा है कि समूह के 9 सदस्यों ने गिरफ्तारी का विरोध किया और कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर गोलियां चलाई। इसके जवाब में पुलिस को उन पर गोली चलानी पड़ी। पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में ले लिया। मारे गए लोग तुमांडोक आदिवासी समुदायों के नेता थे। प्रत्यक्षदर्शी हालांकि घटनाओं के आधिकारिक संस्करण का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि पुरुष निहत्थे थे और उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया था। जवाब में कैपीज के कार्डिनल जोस एडविन कुला ने पास के धर्म प्रांतों के साथ अन्य कैथोलिक धर्माध्यक्षों के साथ एक स्वतंत्र जांच करने के लिए प्रेरित पत्र जारी किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।